ब्रह्मचर्य आश्रम में रेडियो जॉकी भी है। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार की श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण ये लीला करी, गोवर्धन धारी उनको ये नाम मिला, और हमारे आचार्यों ने उनके बहुत ही मधुर उद्गार दिए हैं, उत्प्रेक्षाएं की हैं, तात्पर्य दिए हैं, टीकाएं लिखी हैं इस सुप्रसिद्ध लीला पर। तो हम इन आठ शिक्षाओं में से तीसरी शिक्षा पर हैं। भगवान ने गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करने हेतु ये गोवर्धन लीला रचाई। भगवान के नजरों में उन्होंने गोवर्धन को पूजनीय माना। यहां पर यह प्रश्न उठ सकता है कि ये तो एक पर्वत है, या कई जो नास्तिक विचार वाले हैं वो ये प्रश्न पूछें तो निर्जीव है, पर्वतों को संस्कृत में अचल भी कहा जाता है, जैसे नीलाचल, मंदराचल। अचल का अर्थ है जो चलता नहीं है, जो हिलता नहीं है। तो कोई ये कहे कि भाई एक निर्जीव अचल पत्थर को पूजनीय क्यों माना भगवान ने? जैसे पूजनीय कौन होना चाहिए, पूजनीय किसे मानना चाहिए, ये बाह्य दृष्टिकोण से भगवान और भगवान के प्रतिनिधि जो होते हैं वो उस दृष्टि को नहीं रखते। जैसे कि यदि एक भौतिक उदाहरण भी लें हम, पायल जो होती है वो हो सकता है कि कुछ हजार रुपयों में मिले बाजार में, परंतु कहां पहनी जाती है, पैरों में। कीमत होगी उसकी कुछ हजार रुपए, परंतु पहनी जाएगी पायल पैरों में हमेशा। और एक बिंदी, एक जो विवाहिता स्त्री होती है वो एक बिंदी लगाती है जो बाजार में एक रुपए की मिलती होगी, परंतु वो कहां लगती है, माथे पर लगती है। तो पायल की बाजार की कीमत हजारों होंगी, परंतु ये बिंदी एक रुपए की माथे पर लगती है। इसलिए कीमत से कोई पूजनीय नहीं होता, उसका स्थान कहां पर निर्धारित किया गया है वो निर्धारित करता है कि वो पूजनीय है कि नहीं। तुलसीदास रामायण में एक सुंदर उदाहरण देते हैं संघ के विषय में। धूली के कण वो जब हवा के संग में आते हैं तो राजा के मुकुट पर जाकर बैठ सकते हैं, जहां पर वो स्वयं राजा की पटरानी भी नहीं बैठ सकती। जो राजा के सबसे निकट होगी उसे भी बगल में बैठना होगा, वो राजा के मुकुट पर नहीं चढ़ सकती। परंतु धूली के कण गिरे हुए, रास्ते पर गिरे हुए या फर्श पर गिरे हुए धूली के कण जब वो हवा के संग में आते हैं तो उस पूरे राजमहल में जो इस शहंशाह राजा के मुकुट पर नहीं विराजित हो सकता, ये धूली के कण जाकर बैठ सकते हैं। और यही धूली के कण जब वर्षा के जल के संपर्क में आते हैं तो कीचड़ बन जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि संग का प्रभाव है जिसके वजह से कोई पूजनीय हो सकता है या निंदनीय हो सकता है। यह है संघ का प्रभाव। तो भगवान ने अपना निजी संघ दिया गोवर्धन पर्वत को, न केवल इस दिन जब उन्होंने गोवर्धन धारण किया उस दिन और 7 दिन उसके बाद तो निरंतर संग दिया, परंतु जब भी भगवान अपनी बहुत विशेष लीला गोपियों के साथ या गोप सखाओं के साथ करना चाहते थे तो उनका वो लीला स्थान वो गोवर्धन हुआ करता था। इसलिए भगवान ने गोवर्धन को पूजनीय माना है। अब हम पिछले कुछ सत्रों से रामायण से विभिन्न जो पूजनीय महानुभाव हैं उन्हें ले रहे हैं, जिनमें कि भरत वो एक विशेष स्थान कर लिए हैं। तो हमने ये प्रसंग लिया जब प्रभु श्री राम सीता लक्ष्मण इनकी वन गमन लीला, तो ये एक छोटा सा रिकैप है हमारे पिछले सत्रों से जो शिक्षाएं हम ले रहे हैं। प्रभु श्री राम अब अयोध्या वासियों के विरह में अयोध्या की सीमाओं तक पहुंच चुके हैं। ये नहीं कि केवल अयोध्या वासियों को प्रभु श्री राम का विरह महसूस हो रहा था, बल्कि प्रभु श्री राम उनको भी अयोध्या वासियों का विरह महसूस हो रहा था, और विशेष रूप से भरत, क्योंकि भरत से तो मिले ही नहीं, और रामचंद्र जी वो हालांकि अंतर्यामी हैं परंतु मनुज लीला कर रहे हैं, इसलिए वो ये नहीं जानते थे कि भरत चित्रकूट आएंगे उन्हें ले जाने के लिए। इसलिए उनके अनुसार, उनके मनुष्य लीला के अनुसार अब 14 साल कम से कम बाकियों से रामचंद्र जी मिल तो पाए जाते जाते, परंतु भरत के विषय में रामचंद्र जी सोच रहे थे कि अब आने वाले 14 वर्ष मेरा भरत के साथ कोई संपर्क नहीं रहेगा, देखना तो दूर की बात है। तो इस विरह में प्रभु श्री राम अयोध्या के सीमाओं तक पहुंचे, और तीनों लक्ष्मण उनका मनोभाव कुछ और था जब वो अयोध्या की सीमा पर पहुंचे। रामचंद्र जी भरत के विषय में सोच रहे हैं, लक्ष्मण सोच रहे हैं कि 14 वर्ष अब राम और सीता की निजी सेवा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो उनके अंदर वो एक भय, जो कि बहुत एक मधुर भय, स्वीट फियर अंग्रेजी में अगर कहें, लक्ष्मण वॉज हैविंग द स्वीट फियर, इमोशन ऑफ स्वीट फियर, कि उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है निरंतर 14 वर्ष सीताराम की सेवा। और यहां पर हम पढ़ रहे हैं माता सीता वो तो इतनी मासूम कि उन्हें कुछ नहीं पता कि जाना कहां है, जा कहां रहे हैं, करेंगे क्या, खाएंगे क्या, सोएंगे कहां पर, रहेंगे कहां पर, कुछ नहीं पता उन्हें। इसलिए बार बार वो पूछती जा रही थी, क्या जंगल शुरू हो गया, क्या जंगल शुरू हो गया। तो उनके अंदर ये जो मासूमियत, ये जो बड़े बड़े रामायण के टीकाकार हैं उनकी आंखें गीली कर देती हैं। क्या? सीता मैया की मासूमियत आंखें गीली कर देती है। रामचंद्र जी ने बहुत से साधुओं का संग प्रारंभ किया, तुरंत उन्होंने देर न करते हुए साधुओं का संग प्रारंभ किया, और उनसे सीखना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि सारे वैदिक वांग्मय के स्रोत हैं, अतः सागर इस पूरे वैदिक ज्ञान के, वो साधुओं के चरण कमलों पर बैठे उनसे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। विजडम इज नॉलेज विच इज डाइजेस्टेड बाय ह्यूमिलिटी, अपने उदाहरण से नम्रता, नम्रता का वो प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, परंतु वास्तविकता, एक ज्ञान को अर्जित करने की जो वास्तविकता है वो बता रहे थे। अब पहली रात जब लक्ष्मण सुमंथरा वो देखते हैं राम और सीता को सोया हुआ, तो लक्ष्मण याद कर रहे हैं अब कुछ समय उन्हें मिला है कि वो, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ होती गईं, तो लक्ष्मण को समय भी नहीं मिला कुछ सोच विचार करने का कि घटनाक्रम क्या क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हो गया। तो अब जब पहली रात विश्राम कर रहे हैं उनके आराध्य, तो अब वहां पर लक्ष्मण वो याद कर रहे हैं कि क्या क्या अब अयोध्या में हुआ था, उसको याद कर रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने याद किया सुमित्रा। तो पिछली दफा हमने माता सुमित्रा का उदाहरण लिया कि लक्ष्मण जैसे सपूत यदि कोई माता पैदा कर सकती है, सुमित्रा जैसी माता पैदा कर सकती है, तो अवश्य ही रामायण के ग्रंथकार वो माता सुमित्रा का बखान किए बिना नहीं रह सकते। और यदि लक्ष्मण के अंदर जो अनन्य सेवा भाव और भक्ति के गुण देखे जाते हैं, यदि हम लक्ष्मण जी को श्रेय दे रहे हैं उनकी निरंतर सेवा भाव के विषय में, और हमने उनकी माता सुमित्रा देवी को श्रेय नहीं दिया, तो ग्रंथकार कहते हैं कि वो व्यक्ति जो लक्ष्मण को केवल श्रेय देता है और उनकी माता सुमित्रा को श्रेय नहीं देता, वो बहुत बड़ा अपराधी साबित होता है, क्योंकि स्वयं लक्ष्मण वो हैं भगवान के पहले अंश, परंतु लक्ष्मण स्वयं वो पूरा श्रेय देते हैं अपनी माता सुमित्रा को। और माता सुमित्रा जिनके आंखों में, जिनके हृदय में न केवल अपने पुत्र बल्कि प्रभु श्री राम, सीता, इनके विरह के शोक का एक सागर वो बांधे हुए थी, वो बांध टूट गया जब लक्ष्मण इन्होंने प्रस्थान किया वन की ओर, और लक्ष्मण पीछे मुड़कर देखे नहीं कि उनकी माता सुमित्रा का क्या हाल है। परंतु टीकाकार कहते हैं कि बिना देखे लक्ष्मण माता सुमित्रा का विलाप अनुभव कर रहे थे, बिना देखे बिना सुने। ये शक्ति थी माता सुमित्रा के मातृ प्रेम की, और क्यों, माता सुमित्रा ने अपने भावनाओं को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी वेदना को क्यों उन्होंने छुपा कर रखा, क्यों उन्होंने लक्ष्मण जी के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब मिलता है इस 11वीं शिक्षा में। रामायण में वर्णन है कि ये जो पूरा परिवार दशरथ की तीन पटरानियां विशेष, उनके पुत्र, उनकी पत्नियां, ये सब, ये लोग एक ऐसा परिवार बनाए, एक ऐसा आदर्श परिवार प्रस्थापित किए कि उन्होंने एक पारिवारिक जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, न केवल उस युग में बल्कि नित्य काल तक, यहां तक कि हम कलयुग के निवासी, हम भी यहां पर ये जो दो उदाहरण हैं, प्रभु श्री राम और सुमित्रा, इनको बताया गया है कि ये बैलेंसर्स थे परिवार में। जो सदस्य हैं उन सब सदस्यों का एक निजी साइकोफिजिकल नेचर होता है, क्योंकि इतने जन्मों से वो एक भावना को लेकर आए हैं, उसका पूरा बोझा लेकर जीव जो है वो मनुष्य जीवन में पैदा होता है। तो इसलिए एक ही परिवार में आप देखोगे कि जो सदस्य हैं, हालांकि ये कहा जाता है कि उनके रगों में एक ही खून दौड़ रहा है, ब्लड रिलेशंस अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ही इज माय ब्लड ब्रदर, ब्लड सिबलिंग, परंतु फिर भी हर एक सदस्य परिवार में अनोखा होता है, उसकी इच्छाएं, पसंद नापसंद, हर प्रकार से उसके जीवन जीने की शैली अलग होती, कई बार विपरीत होती है। इसलिए ये बहुत ही व्यावहारिक शिक्षा रामायण के ये पात्र हमें क्या सिखा रहे हैं कि जब तक किसी परिवार के अंदर बैलेंसर्स ना हो, वो परिवार कभी सुख शांति से नहीं रह सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 11वीं शिक्षा है, देयर हैज टू बी बैलेंसर्स इन एवरी फैमिली। इफ देयर आर नो बैलेंसर्स, देन दैट फैमिली विल बी एन अर्थक्वेक जोन। एनी टाइम, नॉट जस्ट अर्थक्वेक जोन, एपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। इसलिए सुमित्रा देवी, उन्होंने लक्ष्मण को जाते जाते क्या आदेश दिया, रामम दशरथम विद्धिम मम विद्धिम जनकात्मजम अयोध्या अटवम विद्धिम गच्छतात यथा सुखम। लक्ष्मण, तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता हैं दशरथ नहीं, अब राम। मैं तुम्हारी मां नहीं, आज से अब 14 वर्ष तक मैं तुम्हारी मां नहीं, तुम्हारी माता रहेंगी सीता, और अयोध्या नगरी तुम्हारे लिए पूरा वन वो अयोध्या है, क्योंकि जहां कहीं पर भी सीताराम है वो है अयोध्या। गच्छतात यथा सुखम, और जो सुख जिसमें राम और सीता सुख अनुभव करते हैं उसी में तुम्हारा सुख छिपा होना चाहिए। गच्छतात यथा सुखम, क्यों माता सुमित्रा लक्ष्मण को इतने डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मण छोटे से 5 वर्षीय बालक हैं। लक्ष्मण स्वयं शादीशुदा, तो इतने बड़े पुत्र को इतने डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन सुमित्रा क्यों दे रही थी? क्योंकि ये जो 11वीं शिक्षा है बैलेंसर्स, तो सुमित्रा वो बैलेंसर थी, जहां पर डायरेक्टली लक्ष्मण और लक्ष्मण की माता का सवाल उठता है, तो वहां पर सुमित्रा वो बैलेंसर थी। तो रामायण में बताया गया है कि राम और कौशल्या, प्रभु श्री राम की माता कौशल्या, लक्ष्मण जी इनकी माता सुमित्रा, तो ये दोनों पेयर्स को अगर हम लें मां बेटे के, तो कौशल्या वो हाईली इमोशनल थी और यहां लक्ष्मण हाईली इमोशनल, तो बैलेंसर्स कौन हुए? रामचंद्र जी कौशल्या को बैलेंस करते थे अपने कंपोजर से, कंपोज्ड नेचर से, बैलेंस्ड नेचर से रामचंद्र जी कौशल्या को अपने वश में रखते थे। और लक्ष्मण इनके विषय में बताया गया है कि जब लक्ष्मण को पता चला उनके अंदर वो हाईली इमोशनल होने की जो क्वालिटी इस लेवल की थी कि जब उनको पता चला कि दशरथ ने ये जो दो वचन कैकेयी को दिए और उसे पूरा करने के पीछे रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ रहा है, तो लक्ष्मण वो कहते हैं रामचंद्र जी से, तो ऐसे स्त्री लंपट पिता, क्या कहते हैं, ऐसे स्त्री लंपट पिता को तो मैं खत्म करूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं भेजूंगा उन्हें। किनको? अपने पिता के बारे में बोल रहे हैं, और वो कोई कलयुग का बेटा नहीं है, ये त्रेता युग की बात हम कर रहे हैं। कलयुग में फिर भी बेटा बाप को बोल दे, परंतु ये लक्ष्मण तो ये इतने ज्यादा जिसको बोलते हैं वॉलेटाइल, हर समय रहते थे, इसलिए सुमित्रा देवी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए लक्ष्मण को हर समय कंट्रोल में रखती थी। इसलिए यदि किसी परिवार में कोई लक्ष्मण की कैटेगरी का है और उस परिवार में यदि सुमित्रा नहीं है, तो होगा क्या? वहां पर हर समय शंखनाद, और आरती का शंखनाद नहीं, कौन सा शंखनाद? रणभूमि के पहले जो शंखनाद वो चलता रहेगा। एक दंपति हर समय उनमें झगड़ा हुआ करता था, तू मैं हर समय झगड़ा हुआ करता था, तो जो पत्नी है वो ऊंची आवाज में हर समय चिल्लाती रहती, यहां से भी ऊंची आवाज, तो स्पर्धा मान लो कि किसकी आवाज ऊंची झगड़े में, गुस्से में। फिर हुआ ऐसा, और पड़ोसी अक्सर सुना करते थे, तो जब भी ऊंची आवाज दोनों की सुनाई देती तो पड़ोसी समझ जाते थे कि मैच शुरू हो गया। परंतु कुछ समय पश्चात पत्नी की आवाज धीमी होती गई और बिल्कुल सुनाई नहीं देने लगी पड़ोसी को, तो पड़ोसी बड़े आश्चर्य में चले गए कि ये इतना सडन चेंज कैसे आ गया। तो एक बार कॉन्फिडेंस में लेके पति को पूछ लिया पड़ोसी ने कि क्या आपने फॉर्मूला नुस्खा अपनाया कि आजकल आपकी पत्नी बिल्कुल चिल्लाती नहीं है आप पर। तो उसने कहा कि पिछले हफ्ते जब वो बहुत गुस्सा कर रही थी तो मैं गुस्सा नहीं किया, मैं शांत रहा, और मैंने उसको एक लाइन बोल दी, उसके बाद से उसका गुस्सा कभी नहीं आता है। क्या बोली, क्या लाइन बोली? मैंने कहा देखो स्त्रियां बुढ़ापे में अक्सर गुस्सा करती हैं, तो जब से मैंने बुढ़ापा वर्ड यूज किया है गुस्सा बंद। अब ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा जो यहां पर पति बैठे हुए हैं। परंतु मुद्दा ये है कि एक को ब्लॉटिंग पेपर होना जरूरी है, एक यदि वो स्याही वाला पेन है तो दूसरा ब्लॉटिंग पेपर कि वो पूरी स्याही को सोखे अंदर। वन हैज टू बी स्पॉन्ज टू एब्जॉर्ब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बैलेंसर्स। यदि हम कुछ और उदाहरण लें, श्रीमद् भागवत से अगर उदाहरण लें तो ध्रुव महाराज के जीवन में देखिए ये दो माताएं सुरुचि और सुनीति। तो सुरुचि का नेचर क्या था? सुरुचि का नेचर हर समय इनसेक्योर और पोजेसिव, कि ये मेरा सौतेला बेटा मेरे पति राजा के गोद में बैठा ही क्यों? तो इनसिक्योरिटी क्या, ये अब गोद में बैठा है, कल को ये ज्यादा लाडला बन जाएगा फिर ये राजा बन जाएगा। तो सुरुचि का नेचर क्या है? इनसिक्योर और पोजेसिव। और सुनीति उसको बैलेंस करने के लिए, यदि सुनीति भी सुरुचि की तरह इनसिक्योर और पोजेसिव होती तो वो फैमिली के अंदर कभी जो थोड़ी बहुत शांति थी वो बिल्कुल शांति नहीं दिखती। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि सुनीति जो कि ध्रुव महाराज की मां, जब ध्रुव महाराज वो अपमानित हुए तो अपमानित ध्रुव वो सुनीति के पास जाते हैं और 5 वर्षीय केवल वो, तो सुनीति क्या कहती है? अब सुनीति भी अगर सुरुचि की तरह होती, ये कहा उसने, उसकी ये मजाल, चल मैं बताती हूं उसको। अगर वो ध्रुव का हाथ पकड़कर ले जाती और फिर जो सुनीति ने सुरुचि ने किया वही सुनीति उसको देती जैसा का तैसा उस टाइप से, तो हो सकता था कि ध्रुव महाराज का गुस्सा शांत हो जाता। ठीक है, किसने इसको खरी खोटी सुना दी? मेरी मां ने सुना दी, पिता तो सुना नहीं पाए, मां ने सुना दी, चलो मैं शांत हो गया। तो जो ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हुआ और ध्रुव लोक प्राप्त हुआ वो सब कुछ नहीं होती थी लीला। तो सुनीति ने बैलेंस कैसे किया? सुनीति ने कहा ध्रुव को कि देखो जो सुरुचि ने कहा है वो कोई गलत नहीं कहा, क्योंकि सुरुचि वो ज्यादा तुम्हारे पिता उसको ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए एक बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा इनकी बताई गई है कि जब हमारे जीवन में हम रुचिकर जीवन जिएंगे, रुचिकर जीवन मतलब मुझे किस में रुचि है बस वो मैं करता रहूं, मुझे ये देखने में रुचि है, ये सुनने में रुचि है, ये खाने में रुचि है, यहां जाने में रुचि है ना, हर समय लोग रुचि की बात ज्यादा करते हैं, रुचि अर्थात लाइकिंग, मेरा इंटरेस्ट। और यहां पर है विपरीत, रुचि का विपरीत है नीति। नीति मींस व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट यू लाइक। और हर समय नीति का मार्ग जो होता है वो कष्टदायी होता है और जो रुचि का मार्ग होता है वो बाह्य रूप से सुखदायी होता है। जैसे कि आप लोग रविवार के सुबह यहां पर आते हो, ये नीति का मार्ग है। इसलिए इस नीति के मार्ग पर चलने के लिए यहां तक आने के लिए आपने सुबह सुबह से बहुत से अरेंजमेंट्स किए होंगे, कष्ट उठाया। वही हम लोग इस्कॉन में आने से पहले रविवार की सुबह कौन सा मार्ग पकड़ते थे? रुचि का मार्ग। और रुचि का मार्ग क्या है? बिस्तर से 11 बजे से पहले उतरना ही नहीं है। मेरा एक मित्र मुझे कहा करता था, संडे की सुबह यदि 11 बजे से पहले तुम बिस्तर से नीचे उतरे हो, तुमने रविवार का अपराध किया है। इट्स एन ऑफेंस टुवर्ड्स संडे टू गेट ऑफ द बेड बिफोर 11। हर समय हम देखेंगे कि जो रुचि का मार्ग है वो बहुत आरामदायक होता है, सुखदायी होता है, और नीति का मार्ग वो हर समय हमें किसी न किसी प्रकार की तपस्या करवाता है। इसलिए हम देखते हैं कि पाश्चात्य देश में वहां पर नीति कम रुचि ज्यादा। इंडिया में चाहे हम कितना भी कोशिश करें फिर भी नीति के मार्ग पर हमें चलता रहना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने ये भारत भूमि बनाई इस प्रकार से, इसलिए ये भोग भूमि है ही नहीं। आर्टिफिशियली अभी हम आधुनिक इस भारत में इसको भोग भूमि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली ये तपोभूमि है। यहां का वातावरण, आबोहवा, सब कुछ यदि आप देखो तो सेटल होने के लिए नहीं है, है ना? इसलिए यहां पर हर समय एक कॉन्शियसनेस क्या रहता है कि जहां पर भी आप अगर सेटल होने का सोचोगे तो सब चीज परिवर्तनशील है। वो कोई सोचेगा कि चलो मैं नासिक में वेदर बहुत अच्छा है तो मैं नासिक में मकान लेता हूं सेटल होने के लिए, इतना सुंदर वेदर है। तो जब तक वो पूरी कोशिश करेगा, पैसे इकट्ठा करेगा, कहीं पे मकान लेगा, सेटल हो जाएगा, पता चला कि बगल में 2 बिल्डिंग और बनना शुरू हो गई, उसकी आवाज, उसका प्रदूषण, बाकी ट्रैफिक की आवाज, ये वो। तो केवल नासिक नहीं, सब जगह पर यही है कि जो रुचि का मार्ग है वो सुखदायी होता है परंतु वो नित्य काल तक नहीं टिकता। तो बैलेंस ध्रुव महाराज के जीवन में कैसे हुआ कि सुनीति ने कह दिया कि हां वो जो सुरुचि बोलती है वो सही बात है, और ध्रुव यदि तुम्हें तुम्हारे पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए, तो केवल एक ही व्यक्ति हैं वो जो तुम्हें दिला सकते हैं, और वो हैं स्वयं साक्षात भगवान श्री विष्णु। इसलिए यहां पर यह समझ में आ रहा है कि ध्रुव महाराज जब भगवत धाम जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले अपनी माता सुनीति के विषय में सोचा, क्योंकि मां जो है वो हर समय अपने पुत्र को नीति के मार्ग पर ही लगाना चाहती है। हालांकि माता अपने बेटे को जो रुचिकर लगता है वो भी देती है, परंतु कब तक देती है? जब तक कि वो नीति के मार्ग से पथभ्रष्ट न हो। जैसे ही एक मां का बेटा नीति के मार्ग से पथभ्रष्ट होना दिखता है तुरंत उससे रुचि छीन ली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम, एक पुरुष के जीवन में प्रेम के जो अलग अलग स्तर आते हैं, जैसे यहां पर हम मां बेटे के संबंध के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो बताया जाता है कि आंख खोलकर जो प्रेम करे उसे कहते हैं दोस्त, आंख बंद कर जो प्रेम करे वो है प्रेमिका, आंख दिखाकर जो प्रेम करे वो पत्नी। तो आंख खोलकर जो प्रेम करता है वो है दोस्त, आंख बंद कर जो प्रेम करता है वो प्रेमिका, आंख दिखाकर जो प्रेम करे। परंतु किसी की आंख बंद होने तक जो प्रेम करे वो है मां। और वो है सुनीति। तो इसलिए ध्रुव महाराज को जब भगवत प्राप्ति हुई तो उन्होंने भगवत प्राप्ति का पूरा श्रेय अपनी माता को दिया, सुनीति को। और क्योंकि उन्होंने अपने अंदर से अपनी मां सुनीति को पूरा श्रेय दिया, इसलिए उन्होंने पूछते ही विष्णुदूत कह दिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, देखिए आपसे पहले वैकुंठ विमान में कौन जा रहा है, आपकी मां सुनीति जा रही है। तो ध्रुव महाराज ने सुनीति को यह दर्जा दिया। सुनीति ने ध्रुव महाराज को क्या कहा कि मैं तो एक मां हूं, मेरे अंदर कितना वात्सल्य प्रेम होगा ध्रुव तेरे प्रति, परंतु भगवान विष्णु की शरण तुम ग्रहण करोगे तो करोड़ों अरबों माताओं का वात्सल्य प्रेम एक भगवान विष्णु रखते हैं अपने हृदय में। ये ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान, ये नीति का मार्ग सुरुचि नहीं दे सकी। इसलिए हालांकि ध्रुव महाराज की ये दो मां, परंतु बैलेंस हुआ ध्रुव महाराज के जीवन में, सुनीति ने वो बैलेंस किया। यदि हम एक और भागवत का उदाहरण लें, दक्ष प्रजापति और शिव जी, तो सती माता उनके जीवन में एक तरफ उनके स्वयं के पति शिव जी और उनके पिता दक्ष, दोनों कट्टर दुश्मन। कौन कट्टर दुश्मन है? ससुर और दामाद। अब देखिए ससुर और दामाद बहुत कम इनमें कट्टर दुश्मनी देखी जाती है, मतलब ज्यादा कोई संपर्क होता नहीं है, दोनों का मेल ईगो होता है ना। सास बहू के अंदर वो ज्यादा सुनते हैं, सास भी कभी बहू थी, पता नहीं ऐसा सीरियल कभी निकला है क्या कि ससुर भी कभी दामाद था। मेरे ख्याल से ऐसा सीरियल अभी तक तो निकला नहीं है। अब तक जितने भी ये सारे सीरियल निकल रहे हैं, सास भी कभी बहू थी, दूध भी कभी छाछ थी। परंतु ये कभी नहीं निकला कि ससुर और दामाद। परंतु यहां पर दक्ष प्रजापति और दामाद, और केवल कट्टर दुश्मनी नहीं, द्वेष। दक्ष वो शिवजी से द्वेष किया करते थे। सोचिए शिवजी जैसे आशुतोष भगवान के इतने सौम्य नम्र भक्त, कि दक्ष प्रजापति को तो गर्व महसूस करना चाहिए था कि महादेव मेरे दामाद हैं, पर उनसे द्वेष। इसलिए दक्ष के विषय में बताया गया है, ही वॉज नॉट जस्ट एनवियस बट ही वॉज ऑफेंसिवली एनवियस टूवर्ड्स लॉर्ड शिवा. परंतु बैलेंसिंग किसने किया कि शिवजी ने दक्ष प्रजापति के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया, बींग हम्बल एंड एब्जॉर्ब्ड. एक होता है कि जो नम्र होता है परंतु वो अपनी नम्रता दिखा दिखा कर दर्शाता है कि मैं कितना नम्र हूं. जैसे प्रभुपाद का पास टाइम है, डिसाइपल प्रभुपाद को कहे, प्रभुपाद आई एम द मोस्ट फॉलन इन द एंटायर इस्कॉन मूवमेंट. तो प्रभुपाद ने देखा कि ये नम्रता को बहुत प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है. तो प्रभुपाद ने उत्तर में कहा, यू आर द मोस्ट नथिंग. परंतु भगवान शिवजी वो नम्रता के साथ, ही वॉज एब्जॉर्ब्ड एंड बिकॉज ही वॉज एब्जॉर्ब्ड, अगर हम इसको इस इक्वेशन से समझे, बिकॉज लॉर्ड शिवा वॉज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन द मेडिटेशन ऑफ हिज सुप्रीम लॉर्ड, ही वॉज ऑलवेज हम्बल. सो इफ वी आर ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन प्लीजिंग श्री श्री राधा मदन गोपाल, वी विल ऑटोमेटिकली बी हम्बल. बट बींग हम्बल मे नॉट गारंटी एब्जॉर्प्शन, बट एब्जॉर्प्शन विल गारंटी ह्यूमिलिटी. दैट्स हाउ लॉर्ड शिवा वॉज बैलेंसिंग बिटवीन सती एंड दक्ष प्रजापति. अब पांडवों में देखें तो अर्जुन बैलेंसर थे, एक तरफ युधिष्ठिर और दूसरी तरफ भीम. तो युधिष्ठिर महाराज का अप्रोच हर समय क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुर्योधन कितना भी निकम्मा, कितना भी वो कपटी हो, युधिष्ठिर महाराज का था फॉरगिव एंड फॉरगेट. और दूसरी तरफ भीम, दोनों एक ही मां के जाए हुए. भीम का क्या था, व्हाट डू यू मीन फॉरगिव एंड फॉरगेट. तो भीम वो मौका ढूंढते थे कि कब दुर्योधन को मैं दंडित करूं. और युधिष्ठिर हर मौके पर फॉरगिव करते थे, हर मौके पर वो फॉरगिव फॉरगेट फॉरगिव फॉरगेट फॉरगिव. अब देखो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को यूज किया. भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को भी यूज किया कि नरोवा कुंजरोवा, क्योंकि अगर वो भीम को बोलते बोलने के लिए तो कोई विश्वास नहीं करता. भीम तो रेडी थे बोलने के लिए, मैं अभी बोलता हूं, एक क्या बहुत सारे मर गए बोलता हूं मैं हाथी. तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के इस फॉरगिव फॉरगेट और सत्यवादी होने के क्वालिटी को धर्म की स्थापना के लिए यूज किया, और भीम को यूज किया जो भीम की क्वालिटी थी, और अर्जुन को इन दोनों के बीच में रखा, क्योंकि मैं हर समय तो नहीं रहूंगा, इसलिए ये दोनों को रेफरी. अर्जुन हर समय रेफरी होते थे कि जब भी युधिष्ठिर महाराज कुछ इस प्रकार का अप्रोच होता उनका, फॉरगिव फॉरगेट, और भीम वो युधिष्ठिर महाराज पर बरस पड़ते कि आप करना क्या चाहते हो, काय चाल काय. तो बैलेंस करने के लिए अर्जुन वो बीच में आते थे. तो हम कुछ उदाहरण लिए हैं, इसलिए मेन प्रिंसिपल समझना क्या है हमें, कि हरेक परिवार के अंदर हमें एक ना एक बैलेंसर को ढूंढ रहा है, और नहीं है तो पैदा करना है, और अगर पैदा भी नहीं हुआ तो खुद बन जाओ बैलेंसर, नहीं तो होगा क्या, सुख शांति अपार्टमेंट्स अंडर रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन. ठीक है. तो अब हम थोड़े प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं कि हम लोग लक्ष्मण जो रात्रि में सोच रहे हैं, सुमंत्रा के साथ चर्चा कर रहे हैं, किसके विषय में, कि घटनाक्रम क्या क्या हुआ वनगमन लीला से पहले का। तो सबसे पहले सुमित्रा देवी के विषय में सोचा और फिर हमने शिक्षा ली, बैलेंसर बनी है सुमित्रा देवी रामचंद्र जी कौशल्या के लिए, सुमित्रा लक्ष्मण के लिए। अब लक्ष्मण सोच रहे थे सुमित्रा अपनी मां से मिलने के पश्चात अब लक्ष्मण जाते हैं उर्मिला उनके स्वयं की पत्नी से मिलने के लिए। ये एक और पूजनीय व्यक्ति बताए गए हैं रामायण के अंदर, लक्ष्मण की पत्नी, जिसके विषय में बहुत कम सुना जाता है, बहुत कम इनकी चर्चा होती है। इनका नाम है उर्मिला। और जो उर्मिला का त्याग है, जो सैक्रिफाइस उर्मिला ने दिखाया, कई टीकाकार कहते हैं कि वो सीता से भी ज्यादा बढ़कर, क्योंकि माता सीता वो अपने आराध्य पति के साथ रही 14 वर्ष, परंतु उर्मिला उनका त्याग सर्वोपरि बताया गया है, क्योंकि उर्मिला ने अपने स्वयं के आनंद को त्याग दिया और अनुमति दी, स्वीकृति दी लक्ष्मण को जाने के लिए। तो लक्ष्मण याद कर रहे हैं कि सुमित्रा उनकी माता के कक्ष से बाहर जब वो निकले तो अगला कक्ष उर्मिला का। तो उर्मिला अब और डरे हुए कि माता सुमित्रा, एक तो एग्जाम टेस्ट पास हो गया, अभी फाइनल एग्जाम उर्मिला से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, तो मां ने तो दे दिया, परंतु पत्नी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना ये फाइनल एग्जाम होता है। तो उर्मिला के कक्ष में लक्ष्मण प्रवेश करते हैं और लक्ष्मण डरे हुए प्रवेश कर रहे हैं। और उस समय उर्मिला वो क्या कर रही थी, वो एक पेंटिंग बना रही थी। आप लोग पूछोगे कि ऐसा माहौल पूरे अयोध्या में और ऐसे माहौल में उर्मिला पेंटिंग बना रही है। उर्मिला को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो गया है, ये सब कुछ मंथरा कई कई इनके षड्यंत्र से क्या हुआ, उर्मिला को कुछ पता नहीं था। उर्मिला को केवल इतना ही पता था कि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक है। तो उर्मिला वो एक बहुत निपुण चित्रकार थी, तो उर्मिला पेंटिंग निकाल रही थी, भेंट के रूप में वो देना चाहती थी एज अ गिफ्ट, किनको, राम और सीता को उनके राज्याभिषेक के समय। तो इसलिए वो उस समय पेंटिंग कर रही थी कि वो भेंट के रूप में दे, और वो पूरा संलग्न थी, एब्जॉर्ब्ड थी उस पेंटिंग को बनाने में, क्योंकि समय कम था उनके पास। और लक्ष्मण डरे हुए वो प्रवेश किए तो द्वार पर ही एक फूलों का गमला पड़ा हुआ था, वो उनके हाथों से गिर गया। तो जैसे ही वो गमला गिरा, आवाज हुई, तो उर्मिला डर गई और जितने रंग थे उसके हाथ में वो सब वो पेंटिंग के ऊपर गिर गए। इतना सुंदर उसने जो पेंटिंग बनाया था, पूरा पेंटिंग खराब हो गया। और उर्मिला अब वो पीछे मुड़कर चिल्लाने ही वाली थी कि किसने उनको डिस्टर्ब किया इस प्रकार से। देखती हैं कि उनके स्वयं के पति, और हाल ही में शादी हुई है उनकी। तो अपने पति को देखती हैं तो शांत हो जाती हैं, परंतु पेंटिंग की ओर देखती हैं कि पूरी पेंटिंग खराब हो गई। लक्ष्मण का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, लक्ष्मण कहते हैं उर्मिला से, घबराओ मत, इस पेंटिंग को पुनः बनाने के लिए, पूरा करने के लिए 14 साल हैं। समाचार कैसे ब्रेक किया? डोंट वरी, यू हैव 14 ईयर्स टू कंप्लीट द पेंटिंग। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। क्या अर्थ है इसका? फिर जब लक्ष्मण बताते हैं कि क्या कुछ नहीं हो गया इनके पीछे, तो उर्मिला ये सब कुछ जब सुनती हैं, तो उर्मिला को अब तक लक्ष्मण ने ये नहीं बताया है कि मैं भी जा रहा हूं। उर्मिला समझ जाती हैं कि जो शब्दावली इस्तेमाल करी लक्ष्मण ने, जो ग्रामर इस्तेमाल किया बोलने के लिए, जिस टोन में लक्ष्मण ने वो समाचार सुनाया, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस थे, उनसे उर्मिला समझ गई लक्ष्मण को बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे पति ने निर्णय ले लिया है कि वो जा रहे हैं। अब कोई साधारण सी पत्नी होती तो वो क्या बोलती, किसने अनुमति दी तुमको जाने की, मुझसे पूछा कि नहीं पूछा, शादी क्यों करी फिर मुझसे, तुमको अगर तुम्हारे भाई की इतनी पड़ी है तो मुझसे क्यों शादी करी, कुंवारे रहते, भाई की सेवा करते, भाई भाभी की सेवा करते। ऑर्डिनरली ये रिस्पॉन्स अपेक्षित होता है। उर्मिला देवी का रिस्पॉन्स, वो कहती हैं लक्ष्मण से कि अब चाहने को वो भी जा सकती थी, उनके पास भी पूरा अधिकार था और उनको कोई मना नहीं कर सकता था कि यदि देखो धर्म के अनुसार अगर पत्नी का धर्म सीता देवी निभा रही हैं और वो कह रही हैं कि पत्नी के धर्म के अनुसार मुझे पति के साथ रहना चाहिए, तो वही पत्नी का धर्म उर्मिला के लिए भी है लागू, तो वो भी कह सकती थी कि मैं भी पत्नी का धर्म निभाऊंगी, सीता निभा रही है, मैं भी पत्नी का धर्म निभाऊंगी और मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी 14 वर्ष। परंतु उन्होंने देखो, उनको कोई समय नहीं मिला था कि इसके बारे में सोच के मैं बताऊंगी, तुरंत उनका रिस्पॉन्स। तो इससे क्या समझ में आता है कि यदि उर्मिला का रिस्पॉन्स तुरंत स्पॉन्टेनियस था लक्ष्मण के साथ नहीं जाने का, और क्यों नहीं जाने का कारण यह नहीं था कि अरे तो इतना बड़ा ऐश्वर्य का जीवन छोड़ के मैं 14 वर्ष वन में कैसे रहूंगी, तो चलो मैं इधर ही रुक जाती हूं, वो रीजन नहीं था। उन्होंने जो रीजन दिया कि आप जा रहे हो बिना किसी विक्षेप के सीताराम की सेवा करने, निरंतर उनकी सेवा करने जा रहे हो, मैं अगर आपके साथ जाऊंगी तो यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड, विक्षेपित आप रहोगे, सो जस्ट टू मेक श्योर दैट लक्ष्मण सर्विस शुड बी अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड देर शुड नॉट बी एनी डिस्ट्रैक्शन, उर्मिला डिसाइडेड टू स्टे बैक। और उन्होंने अपने पति से कहा कि यदि प्रभु श्री राम वो इतना बड़ा त्याग दिखा सकते हैं कि एक बार बोलने पर अपनी माता कैकेयी और दशरथ के बोलने पर वो जा रहे हैं, इतना बड़ा त्याग वो दिखा सकते हैं, इतना बड़ा त्याग यदि सीता दिखा सकती हैं, और इतना बड़ा त्याग यदि आप दिखा रहे हो, तो मेरे लिए सबसे बड़ा त्याग मेरे जीवन का क्या होगा कि मैं आपके संग को आने वाले 14 वर्ष त्याग दूं, ये मेरे तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वनवास का। तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, वन में नहीं जाना। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है, वन में नहीं जाना ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो इसलिए उर्मिला हमको क्या लेसन सिखा रही है, समटाइम्स यू सर्व बाय एब्स्टेनिंग एंड रिफ्रेनिंग, सर्विस का मतलब ये नहीं कि हर समय आगे आके 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 दिखा दिखा के, नहीं, मेनी टाइम्स बाय नॉट कमिंग इन द फ्रंट यू सर्व बेटर, बाय रेफ्रेनिंग एंड एब्स्टेनिंग यू सर्व बेटर द मिशन। जैसे मुझे याद है राधानाथ महाराज जब भी वो अपने फॉरेन ट्रिप प्रीचिंग के लिए निकलते हैं तो अपना पैकिंग खुद ही करते हैं। अभी भी राधानाथ महाराज इतने, उनके हजारों शिष्य हैं, परंतु उनके स्वयं का बैग वो खुद पैक करते हैं। तो मैं जब उनका पर्सनल सर्वेंट था तो बैग में क्या डालना है वो भी मैं नहीं दे सकता उनको, वो भी वो ही निकालेंगे जहां पर भी उन्होंने रखा हुआ है। तो मैं, वो एक दिन कमरे में था महाराज,